कुस्तानी जी तृतीय श्लोक में बतला रहे हैं। यहां तक हम लोगों ने समाप्त किया था, फिर से दोहरा रहा है। यदि इस ब्रज भूमि में रागात्मिक भाव को पाने के लिए यदि हे मन तुम्हारी इच्छा है तो जन्म जन्म में और जन्म जन्म में राग पूर्वक रागात्मिक भक्ति को पाने की इच्छा है तो स्वरूप दामोदर राय रामानंद श्रीलरूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी जी गोस्वामी आदि के चरणों में प्रेम पूर्वक रो रो करके नित्य उनका स्मरण करो। इसमें हम लोग स्वराग के प्रति, स्वरागम किसको कहते हैं, श्रीलरूप गोस्वामी के भक्त गोस्वामी सिंधु से बतलाया। जो लोग स्पष्ट रूप से ब्रज के जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग गोप गोपी है सब ये रागात्मिक भक्ति, जिस समय में रसिक वैष्णव के मुख से और उनके द्वारा रचित पुस्तकों के अनुशीलन से यदि उस भाव को प्राप्त करने की लालसा हृदय में जग जाए और उसके बाद में जो साधन करता है उसको कहते हैं रागानुवाद। फिर बतलाया राग किसको कहते हैं, अत्यंत चित्त आविष्ट हो और ममता अत्यंत अधिक हो, स्वाभाविक रूप में बिना प्रयास के ही चित्त की वृत्तियां उनमें लग रही हो राधा कृष्ण में, तो इसको कहते हैं राग। उसके अनुगत होकर के भजन करने का नाम रागानुगा है। इसमें भजन कैसे किया जाता है इसके लिए रूप गोस्वामी कह रहे हैं कृष्णम स्मरण, कृष्ण का स्मरण अपने अपने भाव के अनुरूप उनका भजन करो और उनके जो जन हैं अपने भाव के अनुरूप स्वजाति स्निग्ध जिनका आशय है ऐसे उनको जन अर्थात वात्सल्य भाव में यदि इच्छा है तो जसोदा मैया नंद बाबा, सख्य भाव में है तो सीताम सुधर मधुमंगल इत्यादि, और यदि गोपी भाव में लुप्त हो तो ललिता विशाखा रूप मंजरी इत्यादि। निज समहितम अपने भाव के अनुरूप उन दोनों का स्मरण करो, एक विषय का एक आश्रय, आश्रय में विशेष रुचि हो और तत्त्व कथा तत्त्व कृष्ण के साथ में माता पिता का या सखाओं का या गोपियों का और गोपियों का कृष्ण के प्रति जो लीला कथाएं हैं उन्हीं में रत हो करके कुर्यात् वासं ब्रजेश्वर ब्रज में वास करो। शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, आत्मा के द्वारा और संभव नहीं या तंत्रतः मन के द्वारा भी वहां पर वास करो। सेवा साधक रूपेण रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी ने साधक रूप में जो सेवा की है उनको ग्रहण करो और सिद्ध रूपेण चात्र ही और अत्र इस वृंदावन में सिद्ध रूप से उन्होंने जो सेवा की है रूप मंजरी इत्यादि के रूप में मन के द्वारा उन्हीं का स्मरण करो। तद्भाव लिप्सुना कार्या ब्रज लोकानुसारत तद्भाव लिप्सुना उस भाव को प्राप्त करने में लगी लालसा जिसमें हो गई है वो ब्रजलोकानुसारतः कार्यम करो। ब्रजलोक के अनुसार ब्रज में रूप सनातन जी जैसे भजन किए उसी को अनुसरण करते हुए कार्य अनुष्ठान करना चाहिए। श्रवण कीर्तनादिनी वैद्य भक्ति उदितानित, श्रवण कीर्तन इत्यादि नौभागिक भक्ति जो है जिस प्रकार से वैदिक भक्ति में साधन करते हैं रागानुगा में भी उसी प्रकार से साधन किया। उसी प्रकार से इसमें होगा किंतु भावना बदल जाए। भाव का ही वैशिष्ट है, रागानुगा में भाव बदल जाता है, वैदिक में भाव दूसरे प्रकार का रहता है। जन्य अंगानी च ताम नत्र विज्ञान मनीष भी, इसलिए अपने साधन के अनुरूप में जो अन्य अंग भी हैं उनको ग्रहण करना या अपने प्रतिकूल हो तो उनको छोड़ करके दूसरे अंगों को ग्रहण करना चाहिए। यद्यपि 64 प्रकार की भक्ति बतलाई गई उनको भी फिर से 5 प्रकार के भागों में विभाग किया गया। अपने अनुकूल भावों को ग्रहण करना चाहिए, सब अंग जो अपने भाव के प्रतिकूल है उसको मत ग्रहण करो। जैसे पीपल इत्यादि की सेवा की बात है, हम लोग तुलसी का आदर करते हैं इसलिए अपने भाव के अनुकूल किया है। उसी तरह से द्वारका इत्यादि का चिंतन और रुक्मिणी प्रभृति का चिंतन भी भक्ति के लिए कहा गया, किंतु अपने भाव यदि ब्रज का है तो उनका ब्रज के भावों का चिंतन करो, उनको छोड़ दो। इसलिए अपने अपने अनुकूल चीजों को ही ग्रहण करो। इसलिए बतलाया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भक्त स्वामी सिंधु से ही 5 प्रकार के भाव। पहला क्या है? भावमय साधन, भावमय। फिर है भाव संबंधी, पुनः भाव के अनुकूल, भाव के अप्रतिकूल, ये भाव है। विरुद्ध को तो छोड़ दो। भावमयी दास्य सख वात्सल्य, इसमें ब्रज में दास्य सख्य वात्सल्य और मत, इनका चिंतन करना ही ये भाव है। भाव संबंधी किनको कहते हैं? भाव के संबंधी श्रवण कीर्तन स्मरण तत्त्व स्थानों में गमन, वैसे ही स्तुति स्तव इत्यादि। किंतु कुछ दिनों में ये भाव संबंधी भी भावमय हो जाएंगे। भाव के अनुकूल तिलक इत्यादि धारण करना, एकादशी व्रत करना, जन्माष्टमी व्रत करना, और ऐसे ही जितने जो अंग हैं इनको ऊपर का मत समझना। एकादशी का पालन, तिलक, गले में माला इत्यादि करना, ये भी पीछे से भावमय ही हो जाएंगे। पहले इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और भाव के जो तटस्थ जो हैं, अनुकूल भी नहीं है प्रतिकूल नहीं है, पुराणों का पाठ पठन कोई हर्ज नहीं और कोई लाभ भी नहीं। महाभारत में युद्ध हो रहा है और युद्ध में भीम ने दुर्योधन को पछाड़ दिया और फिर राज्य ले लिया। उसमें कृष्ण की कुछ गाथाएं हैं किंतु उनसे कोई हमारा लाभ भी नहीं है, हानि भी नहीं है। दशम स्कंद की जो कथाएं हैं उसमें भी गोपियों के संबंध जी कथाएं हैं, वही हमारे लिए उसको ग्रहण करना, उसमें तटस्थ मत रहो। किंतु इनमें कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो, ऐसे बुद्धिमान मनुष्य विचार करके प्रतिकूल का त्याग करेगा, अनुकूल का ग्रहण करके सब में भाव लेकर के भावमय भक्ति में आने की चेष्टा करेंगे। भाव में के अनुकूल, भाव के प्रतिकूल, भाव संबंधी, भाव के लिए तटस्थ, इन सब पर विचार करके भाव को मूल रख लेते हैं, तब सभी कुछ भावमयी हो जाएगा। साधक दशा को पार करने पर भाव दशा होती है। भाव दशा का ही दूसरा नाम रति है। रति के संबंध में रूप गोस्वामी जी कहते हैं, यह रति किसको कहते हैं, यमेव रति प्रौढ़ा महा भाव दशांग ब्रजेत जामृग्याश्चात् विमुक्तानां भक्तानां च ब्रियसी। भाई यही समर्था रति है। रति यही रति बढ़ते 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 महाभाव तक दशा में जाएगी। समर्था रति किसको कहते हैं, अब इसको समझने के लिए तीन प्रकार की रति बतलाया गया। एक साधारणी, सम्मजसा और समर्था। कुब्जा की रति साधारण है। रति क्यों लिया, क्योंकि कृष्ण ही एकमात्र उसके विषय है, दूसरा नहीं है। यद्यपि काम उसमें प्रधान है, किंतु कृष्ण विषय आ गए इसलिए उसको साधारणी ले लिया। कृष्ण का अतिरिक्त और किसी से भी उसकी रति नहीं थी, किंतु केवल मात्र अपनी प्रीति के लिए कृष्ण से प्रीति करते हैं, इसलिए इसको साधारण कहा। और समंजसा, समंजसा माने जिसकी प्रीति भी भक्त है इधर उधर, कृष्ण संबंधी ही है किंतु एकनिष्ठ, एक कृष्ण के प्रति नहीं, जैसे रुक्मिणी सप्तभामा इत्यादि का, कृष्ण के लिए ही सब उनका संबंध है, कृष्ण ही उसके विषय है। किंतु जब ही कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी हुए तो कृष्ण की के प्रति वो प्रति बट करके रुक्मिणी जी बांट दिया अपनी प्रति को, कुछ प्रति कृष्ण में अधिकांश चली गई और कुछ प्रति निकल करके आ गई प्रद्युम्न जी में, उनका नाती हुआ उसमें कुछ लग गया, पोते हो गए, 10 लड़के हुए उनमें विभक्त हो गया, गृहस्थी के कामों में चित्त लग गया, सबका पालन पोषण करना है, क्रमशः वो बढ़ती चली गई, इसलिए कृष्ण को वशीभूत करने में समर्थ नहीं है, इसलिए असमंजस समंजसा है। कभी कभी उनका ऐश्वर्य भाव भी आ जाता है, और समर्था उसको कहते हैं जो संपूर्ण रूप से कृष्ण को वशीभूत कर दे, उनकी प्रति अखंड है, खंड नहीं, न इनको बच्चे हैं, न इनका भर्तवार है, न शरीर के प्रति आसक्ति है, देह के प्रति न दैहिक किसी के प्रति नहीं, अपना श्रृंगार के प्रति भी नहीं है, यदि कृष्ण है तो उनके लिए श्रृंगार करेंगे, बच्चों को दूध भी नहीं देना, घर की व्यवस्था भी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं, केवल मात्र कृष्ण ही उनके प्रति के विषय, इसलिए कृष्ण उनके वशीभूत हो जाते हैं। यही रति भाव की अवस्था में भी समर्था रति होगी, तभी यही समर्था रति जाकर के ब्रज की समर्था तदात्मिक रगात्मिका भक्ति में जाएगी, और जिसकी रति माने भाव ही समर्था नहीं है, अभी उनका अनुगमन नहीं किया तो उनकी रति भी समर्था नहीं, उनकी उनका प्रेम भी जो है वो समर्था नहीं होगा। इसलिए जैसा उनकी जैसी उनकी रति होगी उनका प्रेम भी वैसा होगा। इसलिए ये ऐसी रति है विमुक्त एवं प्रधान प्रधान भक्त भी इस रति का अन्वेषण करते हैं। कौन, ब्रह्मा शंकर, सुखदेव गोस्वामी भी। सुखदेव गोस्वामी का यदि सिद्ध स्वरूप विचार किया जाए तो क्या कर सकते हैं, कहाँ तक जाएंगे? श्रीयाशु राधा कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करा, उनको जगाएंगे, उनकी बात कहेंगे, उनको आनंद देंगे, किंतु गोपियों के भाव के अनुसार में उनको सुख देंगे? ये भी खोजते हैं उस गति को, समर्था गति को। व्यास नारद इत्यादि की तो बात ही क्या है, तो अन्य लोगों को सुख, उपनिषद खोजते हैं इस गति को। गोपाल तापनी उपनिषद, गोपाल मंत्र का जप करके गोपाल तापनी हुई, वो उस लीला में कुछ प्रवेश किया। ऐसे ही ऐसे ये रति वृद्धि प्राप्त होकर के क्रमशः वैशिष्ट से प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ अधिरूढ़ मोहन मोदन मोहन मातन प्रेम वैचित्य दिव्य उन्माद जल्प प्रजल्प इत्यादि उद्भास्वर कितने प्रकार की तरंगें इसमें उठती हैं, इसको कोई गणना नहीं। समुद्र में तरंगे हैं, उनकी गिनती हो सकती है, और एक तरह की तरंग कभी छोटी कभी ऊंची कभी नीची, बस इतना ही। एक नीचे से चलती है, एक ऊपर से चलती है, ये सब कुछ भेद हैं, कहीं गर्म और कहीं ठंडा, लिमिटेड है। किंतु इस प्रेम समुद्र की तरंगे, इनकी गिनती नहीं, कितने प्रकार की तरंगे कैसे चलती हैं, जो कृष्ण को सब समय कभी उछालती हैं, कभी डुबोती हैं, कभी तरंग पर बहा ले जाती हैं, कभी निमग्न करा देती हैं, नहीं कैसे कैसे, कभी गर्मी लगा देती हैं, कभी ठंडी, कभी गर्मी ठंडी, कभी विरह, कभी मिलन, कभी कुछ, तरह तरह की तरंगों में कृष्ण को खिलाती रहती हैं। क्या हो गया भाई? तो तुम ये बसे आछो, तुम ओ दिखे बसब, ए दिखे सुनब, ओ दिखे करब। यही भक्ति समर्थारती स्नेहमान प्रणय राग अनुराग से लेकर के वहां तक पहुंच जाती है। उपमा दिया गन्ना, गन्ने का रस, बीज, गुड़, खांड, शर्करा, सीता और सीतोपल हो जाता है, किंतु रस से जब गुड़ होता है तो रस नहीं रहता, गुड़ हो गया, और गुड़ से यदि चीनी हुई तो गुड़ नहीं रह जाता, और चीनी से फिर हो गई मिश्री तो चीनी नहीं रही, और मिश्री से शीतोपल हो गया तो फिर मिश्री नहीं रही, शीतोपल। किंतु इसमें श्रद्धा से लेकर आठ उधर और इधर में भी शायद आठ, ये सभी अवस्थाएं ठीक रह करके ही महाभाव हो जाता है। अद्भुत, ऐसा कोई चीज जगत में नहीं होता। श्रद्धा से आरंभ हुई, श्रद्धा से महाभाव है, किंतु श्रद्धा भी रही, निष्ठा भी रही, रुचि भी रही, आसक्ति भी रही, और रति भी रही, प्रेम भी रहा, प्रेम से लेकर के महाभाव तक या ऊपर तक सभी को प्रेम के नाम से कहते हैं। जो नहीं जानता वो प्रेम ही कहेंगे, यहाँ तक कि कोई कोई लोग कह देते हैं श्रद्धा उसी को, भक्ति उसी को, प्रेम उसको, निष्ठा उसी को, कोई ज्ञान नहीं। इसलिए प्रेम से लेकर के महाभाव तक जितनी अवस्था है, साधारण लोग उसको प्रेम के नाम से कहते हैं, पुकारते हैं, किंतु इसमें कुछ कुछ वैशिष्ट है, सब एक ही नहीं है। सभी रस अपने में श्रेष्ठ हैं, किंतु निष्पक्ष और गुण रूप में विचार करने से ये अवश्य ही मानना पड़ेगा, ब्रज का जो श्रृंगार और संबंधी प्रेम है, और संप्रदायों में या तो है ही नहीं, और है तो बहुत कम है। वल्लभाचार्य में प्रेम की कमी नहीं, उस संप्रदाय कभी वात्सल्य तक जा करके उसमें, यदि है भी तो थोड़ा, उसी तरह से अन्य संप्रदाय में भी समझना चाहिए, यदि निष्पक्ष होकर के विचार करेंगे तो। किसी में भी पारकीय भाव तो है ही नहीं, विरह और मिलन, संभोग और विप्रलंब, ये दोनों ही केवल संभोग ही, किसी किसी में तो बस मिलन ही मिलन, प्रिया प्रीतम जी मिल रहे हैं, कभी बिछुड़न नहीं है, एक रस में डूबेंगे, विचित्र उसमें विचित्रता नहीं है, जैसे ब्रह्म रस में डूब गए बस एक ब्रह्म द्वितीय नस, ऐसे इसमें संभोग में संभोग रह गया, कोई विचित्रता नहीं रही प्रेम। इसलिए वो लोग भागवत पर विचार अधिक नहीं करते, किंतु भागवत मूल ग्रंथ है, इसको छोड़ करके कोई मधुर रस या किसी चीज की कल्पना करे तो वो उसका आधार नहीं रहेगा। इसलिए आधार को ठीक रख करके हमको चलना है भागवत को लेकर। भागवत इस जगत का ग्रंथ नहीं है, किसी बुद्धिमान व्यक्ति का लिखा हुआ नहीं, अपौरुषीय ग्रंथ है, स्वयं भागवत ही भागवत है, कृष्ण ही भागवत है। इसलिए कह रहे हैं यदि है तो थोड़ा ही अन्य संप्रदाय आदर उनका करेंगे, किंतु दास गोस्वामी ने ब्रजभाव को प्राप्त करने के इच्छुक साधकों के लिए चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र स्वरूप जी, स्वरूप गोस्वामी, स्वरूप जी को क्यों, यदि वो नहीं आते तो जगत में रसराज महाभाव कोई नहीं, यदि रूप गोस्वामी नहीं आते, कृष्ण की भक्ति प्रेम है किंतु उसकी प्रक्रिया जगत को नहीं मिलती, जब कैसे उस प्रेम को हम पा सकते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं आते यदि तो इतने सूक्ष्म सूक्ष्म सिद्धांत की बातें हम लोग नहीं जानते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र स्वरूप रूप सनातन गोस्वामी को शिक्षा गुरु समझो, उनको शिक्षा गुरु मान करके राधा कृष्ण का भजन, महाप्रभु को कभी कदापि न भूलो, सचिन नंदनी नंदीश्वर पति सुत नंदनंदन है, जन्म जन्मनी ये क्यों लिखा, प्रतिजो जन्म, प्रतिजन्म माने प्रतिजन्म, भाई एक जन्म में प्रेमा भक्ति सिद्ध नहीं, अंततः इस जन्म में जब तक भौतिक शरीर है भौतिक मन है या शुद्ध होने पर भी इस जन्म में प्रेम की सिद्धि नहीं होगी, इस शरीर से नहीं होगी, जैसे नारद जी को नहीं हुई, इस जन्म हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, मुक्त महापुरुष है उनकी बात छोड़ो, किंतु साधक एक जन्म में इसी जन्म में जब भी शरीर है मन है प्रेम की प्राप्ति होगी, ब्रज में जन्म होकर के प्रकट बल ब्रज में गोपियों के गृह में उनके गर्भ से जन्म होने पर तब उस प्रेम को पाया जाएगा, और तभी उसमें कुछ कषाय रहेगा, उस कषाय को भी पीछे से दूर करना होगा। इसलिए यहाँ पर बतलाया प्रेम लक्षण रागात्मिका भक्ति अनेक जन्मों में सिद्ध होती है, घबराने की जरूरत नहीं, अनेक जन्म हम इसी जन्म में पाएंगे, ये ठीक, यदि 20-25 जन्म में लाखों जन्म मिल जाती है तो भी समझो तत्क्षणार्थ हो गया, ऐसे समझो। ऐसा भी हो सकता है अभी हम लोग महाप्रभु के बाद में 500 वर्ष के बाद में आए, और हो सकता है कि अगला जन्म होगा वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि के समय में समकालीन में हो जाएगा उनका संग में, और उसके बाद में तीसरा जो जन्म हुआ महाप्रभु जी के लीला में जिस समय रूप सनातन इत्यादि है उस समय हो गया, और इसके बाद में गोपी गृह में, ऐसा हो सकता है। नंबर 4 असत वार्ता विषय मति सर्वस्व हरिणी कथा मुक्ति व्यग्र न शृणु किल सर्वात्मगी अपि तत्वा लक्ष्मीपति रति रतिम इतो व्योमनेनि ब्रजे राधा कृष्णौ स्वरति मणिदत्तं भजमर। हे मन, हे मन, यदि तुम सचमुच में ब्रज में रहकर ऐसे समर्थारति को प्राप्त करना चाहते हो, राधा कृष्ण का प्रेम चाहते हो और रस में निमग्न होकर के गोपियों के अनुगत्य में राधा कृष्ण जुगल की भजन करना चाहते हो, तो प्यारे भैया हमारी सीख सीखो। हम तुमको कुछ कह रहे हैं, उसको सीखो। क्या असत वार्ता एक वेश्या के समान है, जो हमारा धन किनका किनका, जो लोग उच्छृंखल हैं, वैष्णव के अनुगत्य में नहीं है, उनकी मति को एक मिनट में साफ कर दे, सर्वस्व हरण कर ले। यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण के प्रति विशुद्ध मति जिनकी है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियतां कुतोपि यदि लभ्यते तत्लोलमपि मूल्यमेकलं जन्म कोटि सुकृतिर्न लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, इसी को सुमति कहा गया। देखो भाई, सो मत, आंख को बंद मत करो, माया एकदम झपट लेगी, झपटती तो भाई है और गिरा देगी। आप खोल करके सुनो, तो विशुद्ध मति कौन सी है? कृष्ण भक्ति रसभाविता मति। जैसे स्पंज में छेना का स्पंज बना करके चीनी के रस में डुबा दो ना? और उसमें केवड़ा इत्यादि सुंदर सुगंध उसमें लगा दो, खाने के समय में क्या होगा? रसगुल्ला डाला, भारतीय हुआ रस, एकदम भर गया मुंह, उसके अणु अणु में रंध्र रंध्र में रस भरा पड़ा। हाथ में लो, ऐसा थोड़ा सा निचोड़ो तो, पूरा निचोड़ दो तो अभी उसमें रहेगा कि नहीं मीठा, वो छोड़ नहीं सकते। तो जिनकी मति कृष्ण रूपी चीनी के रस में ऐसे पगी हुई है, उस मति को सुमति कहा गया है। ऐसी मति को हरण कर लेती है वेश्या। कौन वेश्या? असत वार्ता, असत वस्तुओं की वार्ता उसको हरण कर लेती है, आत्मा की सत्ता को भी निगल लेती है असत वार्ता। इसलिए सब प्रकार से प्रजल्प, विषयों के प्रति जल्प, अद्वैतवाद का जल्प, मुक्ति का जल्प, ये सब प्रजल्प है, इनको छोड़ो, नहीं तो आत्मा की सत्ता तक भी लुप्त कर देगी। और वो रही सुमति जो थोड़ी थोड़ी सी आ रही है, जैसे वैष्णव का संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए, ब्रज में हम भजन करेंगे, राधा कृष्ण का भजन करेंगे, ये जो सुमति थोड़ी सी आई है ये भी भ्रष्ट हो जाएगी, उसको खा जाएगी, चिबा जाएगी। इसलिए मुक्ति कथा रूपी बाधनी का सब प्रकार से त्याग। असत वार्ता क्या है? वेश्या, जैसे सबका धन अपहरण कर लेती है और फिर त्याग कर देती है। और मुक्ति की जो बातें हैं, कथाएं हैं, वो क्या है? यह बाघनी है, आत्मसत्ता को भी खा जाएगी। और बड़े बड़े अद्वैतवादी वृंदावन के दक्षिण दिशा में अपने डेरे लगाए हैं। वृंदावन का दक्षिण प्रांत क्या है? ज्ञानखंड में अपना ये लगाए, वहाँ पर बड़े बड़े संत आ रहे हैं, कोई आ रहा है हरिद्वार से, कोई रहा है काशी से, कोई आ रहा है दक्षिण भारत कांजीपुरम से, और मायावाद की बातें अद्वैत बात है, अहम ब्रह्मास्मि, ये अमृतमय संदेश है और सब लोग यहाँ के टूट पड़ते हैं। ये बागिनी है एकदम झपट लेगी, ताक लगाए है, मत सुनो। अरे इनकी बात तो छोड़ो, अपितु वैकुंठ दायिनी लक्ष्मी पति रति इतो व्योमनैनी, व्योमनैनी मैंने व्योमने मैंने व्योम की तरफ में नैन रखने वाली अर्थात उसको देने वाली लक्ष्मी के जो पति हैं उनके प्रति जो रति है उस रति को भी छोड़ो, उस रति से भी कोई तात्पर्य नहीं। रति कैसी है? व्योमनैनी वैकुंठ के जो ऐश्वर्य है, लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य जो सबको देने वाली है, यदि ब्रज में वास करने की इच्छा हो मत उसके तरफ में देखो। ब्रजे राधा कृष्ण स्वरति मणि, ब्रजे राधा कृष्ण के प्रति स्वरति, ये अपने रति को देने वाले। कैसी रति? मणि। कौन मणि? चिंतामणि, चिंतामणि से भी ऊपर। चिंतामणि कृष्ण प्रेम को नहीं दे सकती और ये रति जो है रूपीमणि, इसलिए तुम ऐसे रति का तुम भजन करो। जिस प्रकार से वेश्या लंपट व्यक्ति का सर्वस्व अपहरण कर लेती है, असद वार्ता की, उसी प्रकार से जीव की सद्बुद्धि रूपी सर्वस्व अपहरण कर, एक सुनीति है और एक सुनीति है। राजा कौन है? प्रिय व्रत उत्तान पात, उत्पान पात, उत्तान सोने वाले, उत्तान पात ऐश्वर्य में डूबे हुए हैं। उनकी दो पत्नियां, एक सुरुचि एक सुनी। सुरुचि परम सुंदरी, बड़ी मति को हरण करने वाली, अपने सौंदर्य से अपने नखरों से उत्तान पाद को उत्तान कर दिया, उनको अपने वशीभूत कर करके भगवत भक्ति से हटा दिया और अपने प्रिय पुत्र जो भक्त है उसको अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया। सुनीति कैसे थी? बेटा लोभ दिया अपने बेटे को, ऐश्वर्य चाहता है। अरे ये ऐश्वर्य की बात पूछो, ये जगत ये तो मिनटों में हाथ का मैल है आता जाता है। अरे सुनीति वह है कमल नयने जो भगवान श्री हरि है उनकी आराधना कर, उस आराधना से तुमको ये संपत्ति क्या है, ऐसे अविचल अनंत वैभव और संपत्ति तुमको मिल जाए। उन्होंने वही किया और उस नीति पर चल करके कुछ दिनों के बाद में सांसारिक रुचि सब दूर हो गई और अंत में भगवान को उन्होंने पाया। और इधर सुरुचि जी ने क्या किया, अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाना चाहती थी जबकि वो ध्रुव जी तपस्या करके आए तो राज गद्दी पर बैठ गए और इनका भैया उत्तम मारा गया गंधर्वों से युद्ध में और उसी के बीरा में ये भी मरी। तो कहाँ गई सुरुचि? बस खत्म हो गई। तो जबकि एक पतिव्रता नारी की ये स्थिति है पति की सेवा करते हुए भी, तो वेश्या की क्या स्थिति होगी? जघन्य होगी। तो वो लंपट व्यक्ति का सर्वस्व हरण कर लेती है, जीव की सद्बुद्धि रूपी, सद्बुद्धि माने कृष्ण भजन की बुद्धि को, ये तो कौन असत वार्ता, ग्राम्य वार्ता ना बोलीबे ज्ञान ज्ञान ग्राम्य वार्ता ना कही बे जब देखी बे आने, जब दूसरों को देखो तो ग्राम्य बात मत करो। अभी तो यहाँ पर हम भक्ति की बातें कर रहे हैं, अब यहाँ से निकल करके किसी से भेंट हुई, बस संसारी बातें होने लग गई। यही बातें दो प्रकार की, एक विषय की बातें संसारी विषय, और एक होती है इससे ऊपर मुक्ति की बात। तो वो वार्ता में पहली वार्ता जो है ये हो गई वेश्या, और दूसरी है बाघिन। वेश्या से किसी प्रकार से बच गए, सर्वस्व ले लिया, प्राण बचा था, किंतु ये क्या कर लेगी, प्राण ही लेगी, खा जाएगी एकदम, तुम्हारी सत्ता भी नहीं रहेगी, इसलिए मुक्ति में मत जाइए, एकदम विषय में भी मत जाइए। परमार्थिक रति ही भजनशील का जीव का एकमात्र सर्वसाधन। असत वार्ता के द्वारा जैसे वैसी सन्मति भ्रष्ट होकर के भोग और मोक्ष में लग जाती है, इसलिए इसकी आलोचना मत करो, भजन भी करें, कुछ अर्थ भी आए। ये क्या हुआ, मिश्र हो गया ना, सकाम हो गया, धीरे धीरे असत वार्ता न हो गया, इसलिए सबको छोड़ करके शुद्ध रूप से भगवत भजन करना चाहिए। संसार में जितनी प्रकार की इच्छाएं हैं सांसारिक पाने की, वो सभी चीज असत है। क्षुद्र क्षुद्र अर्थों को प्रदान करने वाले शास्त्रों की आलोचना मत करो, जो वाशिष्ठ मत पढ़ो, अरे जो वाशिष्ठ तो बहुत अच्छी चीज। अभी कल एक महात्मा जी आए हैं वृंदावन में, राम सुखदास जी, जो वाशिष्ठ पर बहुत बोलते हैं, संसार झूठा है, संसार झूठा, तुम किस लिए संसार में, सच्चा तुम ही है, तुम कहां से आ गया झूठे संसार में। यदि संसारी झूठा है, गुरु ही झूठा है, तुम भी झूठे हो, झूठे संसार में तुमको क्या लेना देना, तुम क्यों उपदेश दे रहा है, तेरे से अब समस्त उपदेश ही झूठे हैं। ये जितने हैं ये सब है बाघनी के समान, कहेंगे बड़े सदाचारी हैं, पैसा छूने से हाथ में लकवा लग जाता है, अरे नहीं पैसा नहीं छुए, पैसा तो रामचंद्र जी ने छुआ, हरिश्चंद्र जी ने भी, ये जनक जी इत्यादि सभी लोग हैं, गोपियों ने, ये अर्थानर्थ नहीं है, अर्थ में व्यवहार में यदि है तो वो अनर्थ है, आग अनर्थ नहीं है, आग में जल करके आदमी मर सकता है और आग से भोजन कराता है, जठराग्नि में शरीर को धारण किए हुए है, इसलिए ये सब चीज़ें बुरी नहीं है, बुरा चीज़ है व्यवहार, व्यवहार यदि बुरा किया तो मरो। ये यदि संसार नहीं होता तो हम स्टेप बाय स्टेप उस जगत की बातों को कैसे समझते। शाखा चंद्र ने ऐसे इस जगत में भगवान ने ऐसे बना करके रखा है, यदि सब व्यवहार इसका करे, सब प्रयोग, तो हमारी स्त्री के प्रति जैसे प्रीति है वो प्रति भगवान मिल जाए, बेटे के प्रति प्रीति है भगवान मिल जाए, जान बूझ करके ये सब व्यवस्थाओं के लिए व्यवस्था। संसार निरर्थक नहीं है, सत्य संकल्प भगवान से हुआ, इसकी भी आवश्यकता है, दुरुपयोग के लिए नहीं, सदुपयोग के लिए है, इसलिए संसार झूठा नहीं है, इसलिए संसार को कहने वाले ये लोग झूठे हैं, उनको महात्मा ही नहीं समझो, उनका संग मत करो। इसलिए शास्त्रों की आलोचना करने वाले कौन, क्षुद्र क्षुद्र शास्त्र मत करो, अर्थ की पिपाशा मत रखो, अर्थ के लिए मरो मत, स्त्री संघ से बचो, पुरुष संघ से बचो, उनके संगियों से भी बचो, यहां तक कि गृहस्थ वैष्णवों को अपनी पत्नी में भी आसक्ति नहीं रह करके कर्तव्य और अर्धांगिनी, धर्म सहधर्मिणी इत्यादि के रूप में देकर के उसके साथ में भगवान की कथाओं की आलोचना करनी चाहिए, दोनों मिलकर के भजन करें। इन असत विषयों का आसक्ति पूर्वक अनुशीलन का नाम असत वार्ता है, सब इसमें आ गया, क्यों कहना सुनना ही नहीं, इन सब में आसक्ति रखना। सुमति के विषय में महाप्रभु जी ने वही बतलाया, कृष्ण भक्ति रस भाविता, यहाँ तक कि कहते हैं भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत हृदय पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात कथम अभ्युदयो भवे। श्री कृष्ण चरणाम भोज सेवा निवृत्त चेतसाम एषाम मोक्षाय भक्तानां कदाचित न स्पृहा भवे। भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा न करे, भोग और मोक्ष की कामना न करे, ये पिशाची हैं। एक पिशाची है और दूसरी बाघनी है। जब तक ये भुक्ति भोग और मोक्ष की इच्छा हृदय में रहेगी, अत्यंत कोमल वृत्ति वाली भक्ति कभी भी उसके हृदय में नहीं प्रवेश कर सकती। किसी भी चीज की कामना कृष्ण भक्ति को छोड़ करके कोई भी प्रकार की कामना हृदय में रहे, भक्ति हृदय में नहीं आएगी। जब भक्ति की स्पृहा होगी तब वो आएगी। श्री कृष्ण चरणाम्भोज सेवा निवृत्त चेतसा, जिसको कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में आनंद प्राप्ति हो रही है, आनंद में डूबा हुआ है, भोग और मोक्ष में कभी वो नहीं जा सकता। इसलिए भक्तों में भोग और मोक्ष की कोई गंध तक नहीं रहती। मोक्ष भी दो प्रकार का होता है, एक प्रेम स्वभाव उत्तरा और एक स्वसुख उत्तरा। यद्यपि साई मुक्ति के अतिरिक्त और चार प्रकार की जो मुक्तियां हैं, भक्ति का अत्यंत विरोधी नहीं है, तो अभी भक्त लोग इन चार प्रकार की भी मुक्ति को नहीं चाहते, प्रेम सेवा उत्तरा को भी नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? कौन? ब्रजवासी और लोग तो चाहेंगे नहीं। बैकुंठ के नीचे सायु के, बैकुंठ के एकदम बॉर्डर पर चार प्रकार की मुक्तियां, और उसको पार करके जाएंगे तो प्रेम पूर्वक नारद इत्यादि लक्ष्मी की भांति उनकी सेवा। किंतु वैष्णव शुद्ध जो है ब्रजरसी, जो चाहते हैं ब्रजरस में आना, वो इनको भी छोड़, रामचंद्र जी की भी सेवा को प्रणाम करेंगे, यहाँ तक कि द्वारकाधीश की सेवा को भी प्रणाम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पद्यावली से बहुत से श्लोकों को इन्होंने दिया, कितना साफ बज गया। मर्वेंद्रपुरी जी की कैसी सुंदर अद्भुत निष्ठा है, प्रसम प्रसम संतु कवित्व निष्ठा ब्रह्मामृतम वेद शिरो शिरो निवेष्टा वयं तु गुंजा कलित वतंसम गृहीत वंशम कमपि श्रयाम। कवि जन काव्य रस की और वैद्यांतिक जन ब्रह्मामृत की यदि भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं तो करते रहें, तो गुंजामाला और सुंदर सुंदर पुष्पों के आभूषणों से विभूषित अपने अधर पल्लवों पर बंसी को धारण करने वाले किसी गोप कुमार का ही आश्रय लेते हैं और किसी का नहीं लेते। धन्यानांग हृदय भारतांग गिरवर प्रत्यग्र कुंजऊ कसाम सत्यानंद रसंग विकार विभव व्यापृत मंतर। पर्वतराज की, पर्वत माने गिरिराज की, विशुद्ध के शुद्ध कुंज में निवास करने वाले निर्भेद ब्रह्म ज्ञानी धन्य मान्य पुरुषों के हृदय में विकार वैभव रही अंतःकरण का उत्सव कोई अनर्वचनीय सत्यानंद रस प्रकाशित होता है दोहराने को। और पर्वतराज यहाँ हिमालय इत्यादि वहाँ पर आकर के ब्रह्म ब्रह्म कर रहे हैं और उनको आनंद ब्रह्मानंद मिल रहा है, तो मिलने दो, हमको इसे कोई प्रयोजन नहीं। किंतु हमारे हृदय तो नीचे है गोपी रति रस वृंदावन विलासी इंद्र नरिमणि कांति मनोहर कोई गोप किशोर निरंतर क्रीड़ा करते हैं इत्यादि। फिर कहते हैं कविरत्न जी पद्यावली रूप गोस्वामी ने इसको बतलाया, जात प्रार्थे न पार्थियो पदम नैन्द्रे पद पदे मोदते संतत्ते न च योग सिद्धि सुधीयम मोक्षम न कांक्षति कालिंदी वन सीमणि स्थिर तंग्रि मेघ मेघ दियो केवलम शुद्धे ब्रह्मणि वल्लवी भुजलता बद्धे मनोभाव। हमारा मन किसी का मन चक्रवर्ती पद को चाहता है तो वो चाहता रहे, मेरा मन नहीं चाहता, दूसरा का चाहते खूब चाहो। और इंद्र बन करके स्वर्ग में कौन बन, नंदन कानन में सुंदर सुंदर कुंजों में अस्पराओं के साथ में यदि विलास करना चाहता है तो करे। योग सिद्धि में भी बुद्धि को नहीं, हमारी योग सिद्धि में किसी का चित्त लगता है और जैसा चाहता है पानी पर चलता है, आकाश में उड़ सकता है, तरह तरह की विभूतियों को प्राप्त करता है, वो करता रहे, हम वो कुछ नहीं चाहते। हम तो केवल यमुना के तट पर वृंदावन के अंतर्गत कुंजों में स्थिर विद्युत युक्त मेघ की कांति वाले, मेघ की कांति वाले गोप्रमणियों की भुज लता में बधे हुए गोपी गण आलिंगित किसी अर्थ अनिर्वचनीय शुद्ध ब्रह्म की ओर ही मेरा मन भागता है। कवि रत्न जी का और हम लोगों का मन किधर भागेगा, बंसी करांगी पतितम